आदित्य के दिल में राधिका के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर था। ऊपर से वो भले ही खुद को कितना ही सख्त क्यों ना दिखाएं, लेकिन आज भी उन्हें राधिका की सबसे ज्यादा फिक्र थी। जहां गौतम और अर्पित नाराजगी के चलते राधिका से सख्ती दिखा रहे थे, वहीं उनसे अलग उन दोनों से छुपकर आदित्य राधिका से मिलने के लिए आए। उन्होंने बातों ही बातों में उन्हें ईशानी के बारे में बताया, जबकि राधिका पूरी तरह ईशानी के वजूद से अनजान थी। राधिका अपने मुंह से कुछ भी सच कहती उससे पहले श्रुति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोलने का मौका नहीं दिया। श्रुति ने आदित्य से कहा, आप इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे कह सकते हैं कि राधिका की बेटी जिंदा है, जबकि ये सब जानते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आदित्य ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, हाँ, लोगों को यही लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही है। शायद आदर्श ने उसके पैदा होने पर तुम्हें झूठ बोला होगा कि तुमने किसी मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। याद है, तुम एक लड़की को पाल रही थी, वो लड़की आदर्श की नाजायज औलाद थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लड़की को तुम्हारी बेटी के तौर पर तुम्हें दे दिया होगा, जबकि तुम्हारी खुद की बेटी हमेशा से जिंदा थी। आदर्श ने डैड के साथ सौदा किया था, अगर हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे तो वो तुम्हारी बेटी को हमें दे देगा, और उसने यही किया। उसने तुम्हारी बेटी के जन्म लेते ही उसे हमें सौंप दिया था। बोलते हुए आदित्य पूरी सावधानी बरत रहे थे कि कोई उनकी बात गलती से भी ना सुन ले। वहीं आदित्य की बात सुनकर राधिका अविश्वास से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी, वो कुछ पूछने के हालत में नहीं थी। राधिका की हालत को समझते हुए आदित्य ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारी हालत कैसी है। आदर्श ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं गौतम और अर्पित को समझने की कोशिश करूंगा। हमने उसे कॉन्टैक्ट किया है, जब वो यहाँ आएगी तो तुम उसे मिल लेना। उसकी शक्ल में तुम्हारी छवि झलकती है। इतना कहकर आदित्य वहां से चले गए। उनका कहना सही था, ईशानी की शक्ल में राधिका की छवि झलकती थी, जबकि ईशिका पूरी तरह अपनी दादी की तरह दिखती थी। दोनों ही बच्चियों की शक्ल पूरी तरह अलग थी। आदित्य के वहां से जाते ही श्रुति ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया। वो राधिका के पास आकर बैठी। श्रुति ने देखा राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। श्रुति राधिका को अपने गले से लगा लिया। वो उसकी पीठ को अपने हाथों से सहलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है और आदित्य भैया क्या कह रहे हैं। उनकी बातों से एक बात तो साफ है कि आदर्श सिंघानिया तुम्हें हमेशा से धोखा दे रहा था। श्रुति, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए आदर्श से शादी की थी, ताकि इन सबसे दूर रह सकूं। अगर केशव के साथ शादी करती तो ये कभी मेरे और मेरी बच्ची को चैन से नहीं जीने देते। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची पर वो घटिया एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन आदर्श ने मुझे धोखा दिया। वो तो पहले दिन से मुझे धोखा दे रहा था। क्या सच में मैंने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था? राधिका ने सुबकते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रुति उसके दुख को अच्छे से समझ सकती थी। राधिका श्रुति से अलग हुई और उसी दुख के साथ बोली, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दो बेटियों को जन्म दिया था और दोनों को ही अपने हाथों से नहीं पाल पाई। एक बेटी को तो पैदा होते ही इन लोगों ने मुझसे दूर कर दिया था, तो दूसरी मेरी आंखों के सामने थी और मैं फिर भी उसे नहीं पहचान पाई। याद है ना, मालविका ने मेरी ईशिका को कितने जख्म दिए थे। मुझे नफरत है उस औरत से, और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो अपने हाथों से उसे मार डालूंगी मैं। राधिका गुस्से में हाइपर होने लगी थी और ये उसकी तबीयत के लिए सही नहीं था। श्रुति ने उसके कंधे को सहलाया और कहा, शांत हो जाओ राधिका, ये सब तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोनों बेटियां जिंदा हैं। ईशिका इन सबसे छुपकर अलग रह रही है, तो तुम्हारी दूसरी बेटी भी जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी। समझ नहीं आ रहा, खुशियां मनाऊं या दुख? ये लोग मेरी जिंदगी में वापस आ गए हैं तो खुशियां मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस अब तो यही दुआ है कि मेरी बेटियां सही सलामत रहें और उनके बुरे साए से दूर रहें। राधिका ने खुद को मजबूत करके जवाब दिया, तुम दवाई ले लो, तुम्हें आराम की जरूरत है, और प्लीज स्ट्रेस मत लो। तुम लंबी नींद लेती हो तो मुझे डर लगने लगता है, श्रुति ने जवाब दिया। वो राधिका को दवाई देने लगी और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राधिका की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। वहीं उन सबसे अलग रात के वक्त तरुण घर पर आया। इस वक्त ईशिका किचन में थी और उनके लिए डिनर बना रही थी। रूही उसी के पास खड़ी अपनी मासूम बातों से उसका दिल बहला रही थी। माया बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। तरुण के आते ही उसने अपना मोबाइल साइड में रखा। माया ने तरुण को देखते ही तेज आवाज में कहा, कहाँ रह गई तुम? तुम्हारा पति ऑफिस से थका हारा घर आया है, उसके लिए पानी लेकर आओ। ईशिका ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया और पानी के गिलास के साथ बाहर पहुंची। वहीं तरुण अपनी टाई लूज करके खुद को कंफर्टेबल कर रहा था। ईशिका को देखते ही उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। डील के चलते उसने युविका को हाथों कह दिया था, लेकिन वो ईशानी के ऑफिस आने पर कंफर्टेबल नहीं था। तरुण अजीब नजरों से ईशिका की तरफ घूर कर देख रहा था। तभी माया ने उसके हाथ पर हल्के हाथ से मारते हुए कहा, उसे क्यों घूर कर देख रहे हो? वो इस लायक नहीं है कि तुम अपना टाइम उस पर जाया करो। तरुण ने माया को शांत रहने का इशारा किया और फिर नरम लहजे में बोला, माँ आप भी ना, ईशानी मेरी पत्नी है। पास्ट में मैंने जो भी गलतियां की हों, लेकिन अब मैंने ईशानी को वादा किया है कि मैं अब रश्मि से कोई संबंध नहीं रखूंगा। तरुण के ये बदले हुए सुर देखकर माया और ईशिका दोनों ही हैरान हुई थी। कहां वो दिन रात ईशिका को सुनाता रहता था, उसके साथ बुरा बर्ताव करता था, तो वहीं आज वो ईशानी का फेवर कर रहा था। ये बात उन दोनों से ही हजम नहीं हुई। इससे पहले कि माया कुछ पूछती, तरुण ने खुद ही कहा, मॉम आप जानती हैं इसकी दोस्त युविका फिर से एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी। वो चाहती है ईशानी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। मैंने तो उसे साफ कह दिया कि ईशानी ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगी, फिर भी एक दो घंटे अगर ये ऑफिस जाकर मेरी हेल्प कर भी देगी तो इसमें कोई हर्जी क्या है। माया बीच में दखल देना चाहती थी, लेकिन तरुण ने उसे आंखों के इशारे से शांत कर दिया। उसने फिर ईशिका की तरफ देखा, ईशिका भी बिल्कुल चुप थी। तरुण उठकर उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईशिका कुछ कदम दूर हो गई थी। ईशिका ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो तरुण बोला, अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। जानता हूँ हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हम काफी टाइम से एक दूसरे से दूर रहे हैं, लेकिन पति हूँ मैं तुम्हारा और हमारी एक प्यारी सी बच्ची भी है। मेरा यकीन करो ईशानी, मेरे और रश्मि के बीच में कुछ नहीं है। हाँ उसने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी और कुछ टाइम के लिए मैं बहक भी गया था, पर अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इस मामले में तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। रही बात कंपनी आकर तुम्हारी हेल्प करने की, तो उसके लिए इतनी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी कंपनी है, मैं काम करने के लिए आ जाऊंगी। ईशिका ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उसने काम करने के लिए हाँ तो कह दिया था, पर बातों की बातों में तरुण को इस बात का ताना भी मार दिया था कि वो कंपनी उसकी नहीं है।
तरुण को ईशिका के इस तरह बात करने पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को काबू करके जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अब तक नाराज हो मुझसे? मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी शिकायतें किस वजह से हैं। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारी सारी शिकायतें मिटा दूंगा। डिनर के बाद रूम में मिलते हैं। तुम्हें पता है ना मुझे कौन सा परफ्यूम पसंद है? तरुण की बात सुनकर ईशिका सकते में आ गई थी। अब तक वो इस बात को लेकर तसल्ली कर रही थी कि तरुण और ईशानी के बीच कोई रिलेशन नहीं था, तो वो आराम से उसकी जगह ले सकती थी। अब अचानक तरुण को उनका रिश्ता सही करना था और वो ईशानी के क्लोज आना चाहता था। अगर ईशिका की जगह ईशानी यहाँ होती तो तरुण की ये बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाती, पर यहाँ ईशानी नहीं ईशिका थी और इस वक्त डर के मारे उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। ईशिका खोए हुए अंदाज में वहीं पर खड़ी थी तो तरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ बच्चे के लिए खाना लेकर आओ। बोलते हुए उसने ईशिका के कंधे को अजीब तरीके से छुआ। ईशिका जल्दी से उससे दूर हो गई और किचन में चली गई थी। वहीं उसके जाते ही माया ने कहा, पागल हो गए हो क्या तुम? इस लड़की के क्लोज क्यों जाना चाहते हो? मॉम यू नो वेल, जरूरत पड़ने पर इंसान को गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। यहाँ तो मेरी खुद की बीवी है जिसे मुझे बीवी का ही दर्जा देना है। कौन सा सब कुछ पहली बार हो रहा है जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? अगर मुझे चौधरी एम्पायर के साथ सेटलमेंट करना है तो मुझे ईशानी को खुश रखना होगा। आप प्लीज़ इस मामले में कुछ मत बोलिए। प्रोजेक्ट एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते बाद अगर ईशानी ऑफिस आना चाहे तो उसे किसी बात के लिए टोकिएगा मत, तरुण ने कड़क लहजे में कहा। माया ने बिना मन के उसकी बात मान ली। वहीं ईशिका इस वक्त एक अलग ही उलझन में थी। आज रात तरुण उसके क्लोज आना चाहता था। वो उसकी पत्नी नहीं थी, लेकिन ऐसे में उसे कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था जिससे वो तरुण को खुद से दूर रख सके। डिनर हो जाने के बाद तक ईशिका तरुण को इग्नोर कर रही थी। वो रूही को अपने साथ बेडरूम में लेकर बैठी हुई थी ताकि तरुण आए तो उसे बहाना बनाकर वहां से निकल सके। रात के लगभग 12 बजे के करीब जब ईशिका को लगा कि तरुण अब नहीं आएगा, तब वो मन ही मन बोली, आज तो जैसे तैसे मैंने उसे टाल दिया है, लेकिन आगे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। ओ गॉड, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? ईशिका सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी तरुण माया के साथ वहां आया। माया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है ना, मैं कभी कभी तुम पर गुस्सा कर जाती हूँ, पर सच तो ये है कि तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और इस सच को बदला नहीं जा सकता। रूही के पास आज मैं सो जाती हूँ, तुम जाओ अपने पति को खुश करो। ईशिका कुछ समझ पाती उससे पहले तरुण ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने बेडरूम में ले जाने लगा। उसके कमरे से बाहर निकलते ही माया ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था, तो वहीं तरुण ईशिका को लेकर अपने कमरे में पहुंच चुका था। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप कहानी के साथ बने हुए हो। बाकी स्टोरी स्लो नहीं हुई है। पहले आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलते थे तो आपको सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड लगता था, लेकिन अब काम के चलते 1 चैप्टर भी मुश्किल से दिया जाता है, जबकि मेरी कोशिश रहती है कि कितना भी लेट क्यों ना हो जाए चैप्टर रोज पब्लिश करूं, फिर भी छूट ही जाता है। पढ़कर रेटिंग और समीक्षा दे दीजिएगा। कोशिश करूंगी कि ज्यादा पार्ट देकर कहानी को फिर से ट्रैक पर ला सकूं।